Gopijana Vallabha Girivara Dhari
Gopijana Vallabha
Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari
Gopi Jana Vallabha
Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana
Yashoda Nandana Vraja Jana
Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana
Yashoda
Yamuna Tira Vana Chari
Yamuna Tira Vana Chari
Yamuna Tira Vana Chari
Yamuna Kira
Yaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
सामान सब परिवार को दिवंगत ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंचतत्व की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर सेवानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा।
हम थोड़ी देर के लिए श्रवण करेंगे तो भगवद गीता में गीता का जो निचोड़ है सार है जिसको प्रस्तुत करते हैं कृष्ण दसवें अध्याय में और भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं मच्छिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्यमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त बने हैं उनका ये लक्षण है और ये हमारे लिए सूत्र है कि कितना मेरा अनुराग भगवान से हो रहा है और भगवान के भक्तों का संग मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये जो सूत्र है इससे हम सीख सकते हैं। तो भगवद गीता के इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मद चित्ता मदगत प्राणा। तो जो मेरे भक्त हैं वो अपना जो चित्त है चित्त उनकी जो चेतना है हम कहते हैं ना कृष्ण भावना तो उनका जो चित्त है उनकी जो चेतना है वो मुझ में निमग्न करते हैं मदगत प्राणा और उनका प्राण वास्तव में मेरे बिना चला जाएगा। गत प्राणा एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कि मेरा प्राण चला गया आपके विरह में। भौतिक जगत में भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आसक्त होता है तो उसके बिना वो अपना प्राण त्यागने के लिए तत्पर होता है लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रति जो व्यक्ति आसक्त हो गया है उसके क्या क्या लक्षण है तो ये है कि मत चित्त उसका चित्त मुझ में पूर्ण रूपेण लगा रहता है और कोई उसको हटाना भी चाहे तो भी उसके चित्त को कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता। जैसे हरिदास ठाकुर का चित्त कृष्ण नाम में इतना निमग्न हो गया था कि रामचंद्र खान ने लक्ष्य हीरा जो वेश्या है उसको भेजा फिर भी हरिदास ठाकुर का चित्त एक सेकंड के लिए भी कृष्ण के चरण कमलों से कृष्ण के नामों से अलग नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मद चित्ता मदगत प्राणा और वास्तव में हम भगवत भक्ति में लगते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत जोश उत्साह आदि होता है लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जैसे साल बीतते जाते हैं दिन बीतते जाते हैं हम आयु हमारी बढ़ती है भक्तों में बहुत इजी टू एक्सेस होने लगता है ना बहुत चीफ हो जाता है इसको हमें बहुत ऐसे लगता है कि अपने हाथ में है बहुत सरल हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी जो रुचि है वो एक प्रकार से घटने लगती है हम इतने सीरियस नहीं होते इतने उत्साहित नहीं रहते जितना उत्साह हमें पहला है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति रूपी धन को अर्जित करना है तो उसको सदैव उत्साहित रहना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति यही कृष्ण नाम केवल क्रंदन। तो भक्ति क्या है वो कहते हैं कि कोई धन हम इकट्ठा करना चाहते हैं इवन भक्ति में आने के बाद भी भक्ति की महत्वता को हम नहीं समझते भक्ति को और डिटेल में नहीं जानना चाहते भगवत भक्ति के ग्लोरीज को नहीं समझना चाहते और क्या करते हैं हम भक्तों के संग में होने के बावजूद भी भक्ति रूपी धन हमारे हाथ में आता नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति को सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कई प्रकार का साक्षात्कार है एक है दूसरों को बचाओ है ना दूसरों को बचाने में लग जाओ, लेकिन उससे पहला, उससे और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अपने आप को बचाओ। और अपने आप को हम बचाएंगे तभी हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो योग्यता हो सकती है, जब हम दूसरों को बचा सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे दिन हमारे बीतते जाते हैं, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्ति ये केवल गंभीर व्यक्तियों के लिए है। जो वास्तव में सीरियस है इस जगत से बाहर निकलने के लिए, और जो व्यक्ति इसी जगत में रहना चाहता है वो सोचता है उचित है, अरे मेरे लिए एक दूसरा लाइफस्टाइल मिल गया जीवित रहने के लिए, या फिर थोड़ा थोड़ा और आनंद उधर भी है ना, तो अपने भौतिक कार्य में भी करता हूँ, इंद्रिय तृप्ति में भी लगता हूँ, और थोड़ा कुछ अलग से कुछ करना है तो चलो भक्तों का संग भी है, तो फिर वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम कृष्ण को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं भक्त का मतलब है उसकी चेतना, उसका चित्त, उसका मन सदैव मुझ में निमग्न रहे। हाँ, और यही कृष्ण चाहते हैं। भगवद गीता को हम अध्ययन करते हैं तो हर पेज में, हर श्लोका में एक प्रकार से अधिक कृष्ण चाहिए। कृष्ण हमसे किसी चीज की डिमांड करते हैं तो कृष्ण हमसे अपने मन को मांगते हैं, मन मना भो। शुरुआत में भी बोला, बीच में भी बोला, और अंत में भी भगवान वही कह रहे हैं कि अरे अर्जुन आप अपना ये जो मन है वो मुझे समर्पित करो। और कृष्ण वही चाहते हैं। कृष्ण बाकी किसी और चीज के लिए इतने लालायित नहीं है, हमसे वो ना धन चाहते हैं ना कुछ और चीजें चाहते हैं। कृष्ण एक ही चाहते कि ये व्यक्ति कितना तत्पर है अपने मन को लगाने के लिए, क्योंकि मन क्या है, इंद्रिय तृप्ति का स्टोर हाउस है। मन हमें भगवान से अलग दौड़ाता है, भगाता है इंद्रिय तृप्ति की ओर। तो इसलिए जब तक हमारा कृष्ण में मन नहीं लगेगा तब तक हम इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित कदापि नहीं हो सकते। मैं वो हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ, वो राजकुमारी, जयपुर की राजकुमारी नहीं, जो जगन्नाथ के एक पंडा आते हैं जयपुर, वो राजकुमारी, उसकी माता और उसके पिता एक बार जगन्नाथपुरी गए थे। तो जगन्नाथ का जब उन्होंने दर्शन किया तो उस जो महारानी थी उन्होंने जगन्नाथ को प्रार्थना किया कि मुझे एक ऐसी बेटी दो जो आपका ना शुद्ध भक्त हो, जो आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर रहे। तो भगवान तो तुरंत रेसिप्रोकेट करते, आदान प्रदान करते हैं अपनी इच्छाओं का। एक्चुअली हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की केवल बिना किसी कपटता की सरल इच्छा होनी चाहिए, और ये इच्छा हो तो कृष्ण तुरंत उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, तुरंत उस सेवा की इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो इस महारानी की बहुत गंभीर इच्छा थी कि मुझे एक ऐसी पुत्री दो जो आपकी सेवा में निमग्न रहे, उसका चित्त सदैव आप में लगा रहे। तो फिर वो जो राजकुमारी, उन जन्म हो जाता है एक बेटी का उनके घर, जयपुर के जो राजा थे, और फिर वहाँ के जो पुजारी है, पंडाज है, वो जयपुर आते हैं, और आते हैं तो ये राजा रानी वगैरह उनका स्वागत करते हैं। 15 दिन के लिए वो रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं, और जब जाने वाले थे तब राजा ने कई सारी भेंटे उनको दी कि आप जा रहे हो जगन्नाथपुरी, आप हमारी ओर से भगवान जगन्नाथ को ये गिफ्ट्स प्रदान करो, ये चीजें ले जाओ। तो उस समय ये जो राजकुमारी थे उसका चित्त सदैव कृष्ण में निमग्न रहता था, जगन्नाथ के बारे में सोचती थी, उनकी सेवा के बारे में, उनके कथाओं के बारे में। तो उन्होंने देखा कि ये पुजारी वापस जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने फिर उनको कहा कि मैं ये देना चाहती हूँ, एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जगन्नाथ को, आप वो ले जाइए। तो उस राजकुमारी ने तो एक बॉक्स दिया, बहुत सुंदर बॉक्स था, और कहा कि आप ये ले जाइए और ये बॉक्स उनको अर्पित कीजिए। तो जब ये पुजारी जा रहा था लेकर अपने सर पर, छोटा सा डिब्बा था, तो ये सोच रहा था क्या क्या है जो दिया गया है। हाँ, मैं बीच में ओपन पोस्टमैन का कार्य नहीं कर रहा था, एज इट इज नहीं पहुंचाना चाह रहा था, वो बीच में अपने लिए कुछ है क्या देख रहा था। तो जब वो जगन्नाथपुरी में जो एंट्री किया और मंदिर के नजदीक पहुंचने से पहले ही उससे रहा नहीं गया कि क्या इस राजकुमारी ने इतना बॉक्स इतना अच्छा है, तो उसके अंदर जरूर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान चीज होगी। तो वो जाकर उन्होंने खोला रास्ते में और देखा कि कुछ है नहीं, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा है, और उस टुकड़े को उन्होंने क्या किया, फेंक दिया उस पुजारी ने। और जगन्नाथ की प्रमुख सेवा करता था, रोज सुबह जाकर जगन्नाथ का ड्रेसिंग आदि करना, ये सारे कार्य वो करते थे, वो जो पुजारी हैं। तो उस समय वो जो पुजारी, जो पंडा है, वो जब जगन्नाथपुरी में पहुंचा तो वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए या सुबह ड्रेसिंग के लिए वो गए अंदर मंदिर के अंदर। तो वहां जाने के बाद उन्होंने देखा सारे सारे जो पुजारी थे वो जगन्नाथ को देख रहे थे, लेकिन आज एक विशेष चीज भगवान जगन्नाथ में नजर आ रही थी। क्या थी वो विशेषता? कि भगवान जगन्नाथ ने किसी एक चीज, एक एक कागज के टुकड़े को अपने छाती में लगा के रखा हुआ था। तो पुजारी देख के हैरान हो गए, और फिर बाकी पुजारी तो सोचा कि क्या कोई कोई मंदिर के अंदर घुस तो नहीं गया, लेकिन जिस पुजारी ने बॉक्स ओपन करके वो कागज फेंका था तो वो समझ गया कि ये क्या है, ये तो वही कागज का टुकड़ा है जिसको मैंने फेंक दिया था। फिर एक पुजारी ऊपर चढ़ता है, रत्न सिंहासन, भगवान जगन्नाथ जिस पर विराजते हैं, रत्न वेदी कहते हैं उसको, वेदी का मतलब है अल्टर, रत्न सिंहासन पर वो चढ़ते हैं और भगवान जगन्नाथ के छाती में जो कागज का टुकड़ा लगा था उसको निकालते हैं और निकाल कर वो पढ़ते हैं। वो पुजारी पढ़ते तो क्या कि वो जो राजकुमारी थी जयपुर की, उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि हे कृष्णा, वास्तव में मेरे पास अर्पित करने के लिए कोई और वस्तु नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि क्या क्या मैं भगवान को अर्पित करूं, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है और भक्तों का भी वही स्वभाव है, भगवान के जो गुण है वो भक्तों के अंदर है। जैसे श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे तो गुरु पूजा हो रही थी, तो एक विदेशी भक्त कीर्तन कर रहा था ना, श्री गुरु चरण पद्म, तो अभी उसने शुरू किया तो वो गा रहा था, उसने क्या अभी वो इंग्लिश एक्सेंट है उसका, तो उसने बोला श्री गुरु चरण पद्म। तो प्रभुपाद को एक इंडियन डिवोटी फैन कर रहा था छामर, प्रभुपाद के कान में कहता है प्रभुपाद वो आपको गुरु कह रहा है, गुरु मीन्स बैल, श्री गुरु चरण पद्म। प्रभुपाद ने कहा भावग्राही जनार्दन। तो वास्तव में ये क्वालिटी है भगवान के भक्तों का और वैसे भगवान का। तो भगवान हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं, भगवान तो भंडार है ना, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो वहां जगन्नाथ को राजकुमारी ने लिखा था कि हे कृष्णा देखो, मेरे पास आपको देने के लिए कोई और चीज नहीं है। इसलिए भक्तिनो ठाकुर ने कहा आमारा बले ते प्रभु आर के छुनाए, मतलब हर एक जीव को यह अनुभव होना चाहिए कि अपना कहने वाली वस्तु मेरे पास कुछ है नहीं। ये तो हम मिथ्या अहंकार के कारण सोचते कि मैं ये शरीर हूं और मैंने जो चीजें इकट्ठी की है वो मेरी है, ये केवल अज्ञानता के कारण। तो भक्तिनो ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं मूर्खता के कारण कह रहा हूं कि ये मेरी चीजें हैं, ये मैं हूं, लेकिन अपनी कहने वाली वस्तु इस जगत में कोई और नहीं है। तो लेकिन एक चीज है, क्योंकि हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है और ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग हम कर रहे हैं। केवल अपनी स्वतंत्रता को ही भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये कृष्ण चाहते हैं। तो भगवान को वो राजकुमारी लिखते हैं कि कृष्ण मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए, लेकिन एक वस्तु जरूर है जो मैं आपको देना चाहती हूं, और वो क्या है? वो ये है कि मेरे पास ये जो मन है, अपना मन है ना, मैं अपने मन का स्वामी हूं, हम अपने मन को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। तो उस राजकुमारी ने कहा कृष्ण मेरे पास कुछ नहीं है, ये मन है और ये मन आपको मैं प्रदान करना चाहती हूँ। और उसने आगे भी एक लाइन लिखी थी, उसने कहा और मैं जानती हूँ कि आपके पास आपका मन नहीं है, इसलिए मैं अपना मन क्या कर रही हूँ, तुम्हें दे रही हूँ। क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने अपना मन कहाँ छोड़ा हुआ है? वृंदावन में। कहाँ छोड़ा है? ब्रज भूमि में। भगवान जब चले गए 11 साल की आयु में आक्रोड के साथ, जब कृष्ण मथुरा के लिए जाते हैं तो भगवान अपने मन को वहां छोड़ते हैं, इसलिए राधा रानी ने कहा मोर मन वृंदावन। तो भगवान कृष्ण अपने मन को वहां छोड़कर मथुरा के लिए चले जाते हैं। और यदि आप अपना मन किसी एक स्थान में छोड़ते हो और आपके पास जो मर्जी सुविधाएं हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, खाने के लिए अच्छी चीजें हो, बहुत अच्छे कपड़े हो, सब फैसिलिटी हो, फिर भी आप सदैव असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे और हमेशा महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ कमी है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ एक प्रकार से अशांत हैं, क्योंकि उनका मन अपने पास नहीं है। उन्होंने मन किसको दिया है? अपने भक्तों को दिया है। इसलिए हम जैसे कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, है ना, कृष्ण भावना भावित, वैसे ही भगवान भी भगवत भाव भक्त भावना भावित होते हैं। भगवान किसी चीज के बारे में अधिक सोचते हैं तो अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमें कृष्ण ने बहुत बड़ा स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण। हम भक्त बनना कोई छोटी मोटी वस्तु बनने के कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। प्रभुपाद जब 77 में लंदन गए, उनका आखिरी विजिट था, बहुत बीमार थे प्रभुपाद, फाइनल 2 महीने पहले शरीर छोड़ने से कुछ महीने पहले आखिरी उनका विदेश टूर था। जब लंदन गए तो प्रभुपाद को मिलने के लिए बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आए, इंडियन यूथ आए। तो प्रभुपाद को हर यूथ कह रहा था कि हाँ, प्रभुपाद ने पूछा क्या करते हो आप, क्या करते हो? किसी ने कहा मैं PhD हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास वो डिग्री है। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि अब PhD हो ये हो, हम तो एक ही चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या? भक्त। भक्त ये जो पोजिशन है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये उपाधि है, भक्त बनना, इसी के लिए, इसी में हम इंटरेस्ट अपना रखते हैं। इसलिए हम भक्त बन रहे हैं, ये कोई छोटी वस्तु नहीं है। भक्त वो व्यक्ति है जो भगवान को कंट्रोल में करने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन भक्त बनने के लिए हमें क्या करना होगा? उतनी ही शरणागति हमें विकसित करनी होगी, और उसके लिए अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर, अपनी वाणी, सबको लगाना होगा। अब देखो, व्यक्ति को PhD प्राप्त करना है तो बचपन से पढ़ाई शुरू करता है, कितने साल लगते हैं? 20-30 साल तो वैसे गवा है। एक पेपर का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए कि मैं PhD होल्डर हूँ, बचपन से हम पढ़ते हैं कि नहीं, है ना? इतने सालों तक अपना लाइफ 30 साल बिताते हैं। तब सोचो हम क्या बनना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते हैं, और भगवान को सबसे अधिक कोई चीज प्रिय है तो वो भक्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि आप बताओ सबसे बड़ा यश क्या है इस जगत में? हम सब फेमस होना चाहते हैं, नहीं, हर चीज से, और फेमस हम इन 6 चीजों में होना चाहते, ब्यूटी में, धन में, नहीं, 6 ऐश्वर्य जो भगवान के हैं। तो रामानंद राय को जब महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ा यश क्या है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि हे महाप्रभु, कृष्ण का ना अनन्य भक्त बनना, इससे बढ़कर इस संसार में यश, इससे बढ़कर इस संसार में पोजीशन, उपाधि कोई और नहीं है। तो इसलिए हमें किसी चीज के लिए लालायित रहना है तो वास्तव में मुझे भगवान का भक्त बनना है। बाकी चीज तो हम अपने कर्मों के अनुसार बन ही रहे हैं, बाकी चीजें तो हमारे जीवन में आएगी, जो भी भौतिक सुख है, भौतिक फैसिलिटी है, धन है, सौंदर्य है, ये सारी चीजें आएगी उसके लिए। इसलिए नारद ने कहा कि आप उसके लिए इतना प्रयास मत करो, वो चीज वैसे ही आने वाली है। जिस प्रकार से दुख जीवन में आता है बिना किसी आमंत्रण के, वैसे ये जो सारी चीजें हैं वो आने वाली है, लेकिन एक चीज के लिए प्रयास करो, क्या? कृष्ण का अनन्य भक्त बनने के लिए। और हमें वास्तव में भगवान का अनन्य भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनता है तो वो किसी का ऋणी नहीं रहता इस संसार में, नायम आत्मा ने। वहां कहते हैं कि ये जगत में हम जन्म लेते हैं तो हर समय हमारे ऊपर सबके ऋण है, माता पिता का ऋण है, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपना ब्लड उन्होंने खर्च किया है, अपने डिजायर्स को रोका है, लेकिन किसको बड़ा करने के लिए? पुत्र आदि को। और तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि माता पिता के ऋण से मुक्त होना है तो उसको शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, तो माता पिता से ऋण से वो मुक्त होता है। फिर उसके अलावा देवी देवताओं का ऋण है, जो हमें सांस दे, हवा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, तो उनके ऋण से मुक्त होना है तो हमें यज्ञ करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो साधु लोग हैं, जो हमें नॉलेज देते, ज्ञान देते, शास्त्र जिन्होंने दिए हैं, हाँ, तो उनके ऋण हमारे ऊपर है, तो उनके ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अभी कितना कंफ्यूजिंग है, नहीं तो क्या करे? माता पिता का ऋण एक जीवन में चुकाना है तो फिर मुश्किल है, और फिर साधुओं का चुकाना है, फिर यज्ञ, कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो श्लोक प्रभुपाद ने गीता के पहले अध्याय में एक तात्पर्य में कोट किया है, भागवतम का ये श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं गतो मुकुंद परिहृत्य कृतम। यदि मुकुंद की शरण ग्रहण करते हो, मुकुंद के शुद्ध भक्त बनते हो, तो आप इन सब भौतिक जो ऋण है उनसे मुक्त हो जाते हो। इसलिए कहा गया श्रद्धा शब्दे कहले सदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा का मतलब क्या है, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा फेथ है, फेथ का लेवल है कि बस मुझे अपने लाइफ में भगवान की भक्ति करनी है, उनका भक्त बनना है, और इसलिए हमारा जीवन है, और इसलिए वास्तव में हमारे पास शरीर है। और यदि हम इतना अच्छा मौका गवा देंगे अपने हाथ से, यदि बहुत ढीली ढाली भक्ति करेंगे, जिस प्रकार से हम सोचते हैं अरे चलो भक्त आ गए थोड़ा सुनते, कभी पढ़ लिया, कभी कीर्तन किया, कभी नहीं किया, कभी प्रसाद खाया तो कभी भौतिक भोग खा लिया ना, ये सब इस प्रकार से चलता रहेगा तो हम भगवत भक्त कभी भी नहीं बन सकते। तो प्रयास होना चाहिए कि मुझे अच्छा भक्त बनना है। हाँ, हमारे लिए इसलिए हमें जो महान महान भक्त है, हाँ प्रभुपाद है, ये इतने सारे आचार्य हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके उदाहरण से हम प्रेरित हो जाते हैं कि वास्तव में मेरा जीवन भक्त बनने के लिए दिया है। कृष्ण ने मुझे एक जीव यदि केवल इच्छा करता है ना कि मुझे भक्त बनना है, केवल ये इच्छा मात्र से उसके जो पूर्वज हैं, अब पितृगण वगैरह ये सारे उस जहां तक किसी नरक आदि में भी हो, वो आनंदित होने लगते हैं कि अरे हमारे कुल में कोई कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर रहा है, कृष्ण का नाम करने की इच्छा कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से हमें भक्त बनने के लिए तीव्र इच्छा करनी चाहिए, और वो इच्छा कैसे जागृत होती है, जब हम भगवान के भक्तों का निरंतर संग करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कि भक्ति का जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस, वो क्या है, साधुओं का, भक्तों का संग। और भक्तों के संग में क्या होता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के भक्तों के संग में ये यदि नहीं हो रहा है तो भक्तों का संग नहीं है। भक्तों लोग आपस में मिलकर कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के वर्णन नहीं कर रहे, और एक दूसरे को बोध नहीं दिला रहे। बोध मतलब जैसे कहना बोधयंता परस्पर, मतलब एक दूसरे को एंकरेज करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को इंस्पायर करना कृष्ण की भक्ति करने के लिए। या कोई व्यक्ति ढीला हो गया है, भक्ति छोड़ के जा रहा है, तो उसको जगाना, बोध दिलाना। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो ये भक्तों के संग में यदि नहीं हो रहा है तो भक्तों का संग नहीं। इसलिए कहते ये जन्म मूल है, भक्तों का संग को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए भागवत में भी वर्णन आता है भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते, जायते में जन्म लेती है भक्ति, तो भक्तों के संग में जन्म लेती है। इसलिए निरंतर भक्तों के संग में आकर एक साथ श्रवण करे, एक साथ कीर्तन करे, एक साथ हरि नाम ले, एक साथ कृष्ण की चर्चा करे अधिक से अधिक। जब हम कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुनते हैं, चर्चा करते हैं, सेवा में निमग्न होते हैं, तो हमारा चित्त को भी वो कलर चढ़ने लगता है कृष्ण भावना का, फिर हम कृष्ण को भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। यही तो गोपी भाव है। गोपी भाव का मतलब क्या है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना। कृष्ण चले गए मथुरा, गोपी आपस में चर्चा करते कि क्या फायदा उनका स्मरण करने से, हमें तो भूल जाते, बात नहीं करना अभी कृष्ण के बारे में, एक दूसरे को बोलती है। ऐसा कहते कहते इतना निमग्न हो जाती है कि वो भूल ही गए कि हमें कृष्ण को अपने जीवन में भूलना है। ये है, इसलिए शास्त्र कहते हैं एक भक्त के लिए मृत्यु क्या है, कृष्ण को भूलना, और हमारे लिए जन्म क्या है, कृष्ण का हमेशा स्मरण करना। लाइफ है हमारा कृष्ण का स्मरण करना। इसलिए हमारे सारे प्रयास यही होने चाहिए कि क्या क्या करूं मैं जिससे मैं अपने जीवन में कृष्ण का स्मरण अधिक बढ़ाऊं, क्योंकि हम हर जीव स्वतंत्र हैं, हम भक्ति में एक साथ है लेकिन फिर भी क्या है, स्वतंत्र है, हम अपना अलग अलग प्लेन चला रहे हैं ना, एक साथ ही बहुत सारे प्लेन जाते हैं ना युद्ध करने के लिए, तो हम अपना अपना चला रहे हैं, तो हमें अपने प्लेन का ध्यान रखना होगा और साथ साथ दूसरे की भी हेल्प करनी होगी। जब आप ग्राउंड में होते हो तो ग्राउंड लेवल में आपको हेल्प मिलती है, एक बार उड़ जाओगे ऊपर तो फिर बस क्या होगा, आपको फिजिकल हेल्प नहीं मिलेगी, एक प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। नहीं ऊपर जाए तो एक दूसरे को वायरलेस के द्वारा बोलते रहते, अरे कहाँ हो तुम, कैसे उड़ रहे हो, हाँ देखो वहाँ उस प्रकार वहाँ शत्रु है, ये है वो है। तो उसी प्रकार से भक्त गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं जिनको हमें स्वीकार करने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो फ्लाइट है ये बीच में क्रैश ना हो जाए, उसके लिए चिंता होनी। और वो क्रैश होने का मतलब क्या है, वैष्णव अपराध। क्या है, वैष्णव अपराध, भक्तों वैष्णव के प्रति अपराध जब बढ़ने लगते हैं तो फ्लाइट धीरे धीरे इसमें आ जाता है, शत्रुओं के चंगुल में आता है, फिर एक दिन विनाश हो जाता है। भक्तों के प्रति अपराध करते तो उसका पहला स्तर ये क्या है रिजल्ट, जप करने की इच्छा न होना, जप होता ही नहीं है, हरे नाम ऐसे लगता है अरे क्या हो गया, इतना हेवी कैसे हो रहा है, एक एक माला एक एक तोप हजारों किलो के समान महसूस होते, नाम नहीं निकलता कृष्ण का, बल्कि हरे नाम लेना कितना सरल है, जीवा को हिलाओ और कृष्ण नाम निकलते लगेगा। इसलिए भक्ति में हम आते हैं कुछ साल बीतते हैं तो, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा चेक करना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि ये जो एकादशी हमें दिया है वो उसी के लिए है। एकादशी क्या है कि हमें चेक करने के लिए, सिंहावलोकनम, जैसे सिंह जब चलता है तो थोड़ी देर जाकर बैठता है, फिर देखता है कितना दूर आया हूं मैं, पीछे मुड़ के देखता है। तो हर 15 दिन में अपने भक्तिमय जीवन को चेक करना चाहिए, कैसे रहा 15 दिन का मेरा जप, कैसे रहा श्रवण मेरा, कैसे रहा मैंने क्या क्या अध्ययन किया 15 दिनों में, और कैसे रहा भक्तों का संग करने की इच्छा हो रही है, भक्तों के नाम सुनते भागने की इच्छा हो रही है, अरे वो कहाँ से आ गए वो भक्तों, परेशान हो रहा हूँ भागो यहाँ से, ऐसी भावना यदि आ रही है तो समझना चाहिए कि कुछ तो कमी हो रही है। हाँ, और कितनी प्रकार से सेवाओं में मैं इन्वॉल्व होता, तो 15 दिन में हमेशा चेक करना, जैसे बिजनेस में भी चेक करते हैं कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, क्या हो गया। तो उसी प्रकार से हम साधक हैं, हम भक्त नहीं बने। प्रॉब्लम क्या है, हमें कहा जाता है भक्त और हमें लगता है मैं तो भक्त बन गया, अभी भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम साधक हैं। हाँ, जैसे वो मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं ना, स्टेथोस्कोप लगा के जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं वो घूमते हैं, सब लोग उनको डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं, अरे यदि वो भूल जाए कि मैं ट्रेनी हूँ तो फिर प्रॉब्लम है उसके लिए। वैसे हमारी सिचुएशन है, हम सब लोग क्या है, ये नाम तो ले लिया हमने भक्त या फिर दास, तो लेकिन अभी हम अंडर ट्रेनिंग है, अभी परफेक्शन नहीं है। तो परफेक्शन क्या है, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सिद्धि मीन्स परफेक्शन। तो इसलिए उन्नति का एक लक्षण है कि भक्तों का संग अच्छा लगना चाहिए हमें। प्रसाद तो अच्छा लगता ही लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भक्तों का संग अच्छा लग रहा है, सेवा करना अच्छा लग रहा है, जप करने की बहुत इच्छा हो रही है, पढ़ने की ऐसी इच्छा हो रही है कि जिभा में पानी आ रहा है, कब मैं जाऊँ और किताब को खोलूं, ऐसे होना चाहिए। और ये जब इच्छाएं नहीं हो रही है तो फिर हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, हम तो एक ही जगह में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। तो इसलिए अपने आप को निकालो बाहर और हमेशा तत्पर रहो कि मुझे भगवत भक्ति में उन्नति करनी है। हाँ, जैसे अपने बिजनेस स्कूल्स आदि में हम आगे आना चाहते हैं, फ्रंट नो, अधिक से अधिक मुनाफा चाहते हैं, उसी प्रकार से भक्तिमय जीवन में तो कभी भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अरे बहुत हो गया, 16 माला कर रहा था, 1 साल से किया है, अभी थोड़ा 1 हफ्ते के लिए छुट्टी, नहीं ऐसे नहीं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। क्यों, क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब आएगी। हाँ, और मेरे शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई चीज खराब हो सकती है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स होने से पहले आज ही मुझे अपने भक्तिमय जीवन को बड़ा गंभीरता से स्ट्रांग से लेना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम सोचते हैं अरे जाने दो ना, आज का दिन कल करूंगा, हाँ कल अच्छा भक्ति, कल अच्छा चैंटिंग करूंगा, आज जाने दो, आज थोड़ा ना थोड़ी सी खांसी है इसलिए, हाँ थोड़ी सी खांसी है कल जब करूंगा। हाँ, तो ये सब चीजें रुकावट है, तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने चित्त को अपने मन को भगवान में अधिक से अधिक लगाने के लिए। और बेस्ट उपाय है भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में बाकी जो चार चीजें हैं वो होती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए पांच चीजें मुख्य हैं। सबसे पहले साधु संग, नाम संकीर्तन, और मथुरावास, अर्च विग्रह की सेवा, और श्रीमद भागवतम का श्रवण। तो उसमें से महाप्रभु ने सबसे पहले कोई चीज लिखी तो वो साधु संग लिखा, फिर नाम संकीर्तन लिखा, फिर लिखा भागवत श्रवण उस श्लोक में, फिर आया मथुरावास, फिर है डेटी वर्शिप, विग्रह की पूजा। तो इसलिए क्योंकि साधु संग में ये पांच चीजें होती हैं, ना चाहते हुए भागवत सुनना पड़ेगा आपको, हरि नाम का जप करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भक्त हैं वहाँ धाम है, वो स्थान, तो और वहाँ भगवान के विग्रह आदि हैं। तो इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को पर्सनली बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा ये जो मौका हमें अपने जीवन में मिला है भक्ति करने का, उससे हम वंचित रह जाएंगे। बल्कि आपने आपको इतना भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल नीच हूँ, कहाँ मुझे मेरा जीवन था, और कृष्ण ने और प्रभुपाद की कृपा से कहाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण का नाम लेने की, भक्तों का संग करने की, धाम में जाने की। अब सोचो यदि हम प्रभुपाद के संपर्क में नहीं आते तो हमारे जीवन में इतना अच्छी चीजें होती नहीं होती, हम वही गटर के कीड़े की तरह मल के साथ बह जाते हैं भौतिक जगत में। भौतिक जगत क्या है, सारा मलमय गटर है जिसमें सारे जो घूम रहे हैं, और गटर में रह के वो सोच रहे हैं कि कितना बेटर स्थान है मेरा। वास्तव में प्रभुपाद ने एक एक कीड़े को उठा के बाहर निकाला है, कीड़े अभी ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा स्थान अलग है, भगवान के चरणों में है। इसलिए ये तभी संभव हो सकता है हम अपने पर्सनल आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लें, और श्रवण कीर्तन में विशेष रूप से ध्यान दे। महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, गुरु के द्वारा हम श्रद्धा रूपी भक्ति का बीज प्राप्त करते। दीक्षा क्या है, दीक्षा का मतलब ये है कि श्रद्धा रूपी जो बीज है वो गुरु हमें देते हैं, जिसको हमारा कर्तव्य है रोज श्रवण कीर्तन का पानी डालो डालो डालो, वो अंकुरित होगा, फिर उसको फेंसिंग करो, उसको बचाओ बाहर के खत पतवार से। तो ये सब हमें गंभीरता से लेना चाहिए और करना चाहिए, तब कृष्ण देखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सीरियस है, सिंसियर है, तो कृष्ण सारी सुविधा हमें देंगे, बेस्ट भक्तों का संग देंगे, सारी चीजें प्रदान करेंगे भक्त बनने के लिए। प्रॉब्लम हम भक्त नहीं बनना चाहते, यहाँ जब वो ध्रुव महाराज अपने घर से बाहर क्या निकले हैं, भगवान को चिंता होने लगी, अरे ये मेरा भक्त बनने के लिए जा रहा है, मेरी ओर आना चाहता है, मैं भी उसके अंदर भौतिक इच्छा है, तो भगवान ने तुरंत उनके लिए नारद, नारद भागो वहां जाओ, पहले उनको अटेंड करो, मेरी सेवा छोड़ो, लेकिन उनको क्या करो, उनको अटेंड करो। तो भगवान सारे सारी चीजें प्रदान करते हैं जब हम भक्त बनना चाहते हैं और सेवा करने की इच्छा रखते, तो कृष्ण रिवील करते हैं। तो इस प्रकार से हमें गंभीर होना चाहिए अपने जीवन में, और दूसरों के साथ भक्तों के संग में सदैव यही चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण हमारे चर्चा का विषय हो तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें संग बहुत आवश्यक है। माया का काम क्या है, कलयुग भक्तों पर अटैक कैसे करता है, कली तो भक्तों के बीच में नहीं घुस सकता, क्योंकि चार नियम हम पालन करते हैं, इनको ब्रेक करेंगे तो कली घुसता है। लेकिन पांचवी चीज कली आता है, कली आता है भक्तों में मन मुटाव ला देता है, डिवाइड, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है छोटी छोटी चीजों से, वो बेचारे अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक एक को पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देता है कली, फिर एक एक भक्त खत्म हो जाते हैं, ना प्रैक्टिस हो पाती है, माला छूट रहे, सेवा छूट रहे, मंदिर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, भक्तों का संग अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब होना शुरू होता है। तो इसलिए प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम समझें, अध्ययन करें और प्रैक्टिस करें गंभीरता से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
हिताय गौर प्रेमानंद।
हरे हरे बोल।